एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सच में अंदर तक झकझोर देती है, ब्रायन स्टीवेंसन की जस्ट मर्सी। ये कहानी है अमेरिकी न्याय व्यवस्था की, लेकिन आप यकीन मानिए इसके जो मुद्दे हैं, न्याय, अन्याय, पक्षपात और सबसे बढ़कर इंसानियत और दया, ये दुनिया के हर कोने में गूंजते हैं, मुझे लगता है।
हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये किताब बेसिकली उन लोगों की आवाज बनती है जिनकी आवाज अक्सर सिस्टम के शोर में कहीं खो जाती है, मतलब गरीब, हाशिए पे धकेल दिए गए लोग, या फिर वो जिन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कानून की नज़र में वाकई सब बराबर हैं, और क्या न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना है या कुछ और भी।
तो आइए इस महत्वपूर्ण किताब की परतों को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं ब्रायन स्टीवेंसन, जो खुद एक वकील हैं, अपने तजुर्बों से, अपने अनुभवों से हमें क्या सिखाते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि सिस्टम की वो सच्चाई है जिसे जानना, मुझे लगता है, हम सबके लिए जरूरी है।
इस किताब और इसकी बातों को ठीक से समझने के लिए ना इसके लेखक ब्रायन स्टीवेंसन को जानना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं है, बल्कि एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, एक वकील हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के हक की लड़ाई में लगा दी जिन्हें अमेरिकी न्याय व्यवस्था ने लगभग भुलाई दिया था।
हाँ बिल्कुल, वो इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव ईजेआई उसके संस्थापक हैं, हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, उन्होंने अपना काम आलीशान दफ्तरों से ज्यादा अलाबामा की जेलों और अदालतों में किया है। दशकों से वो मौत की सजा पाए कैदियों के लिए लड़ रहे हैं, गलत तरीके से दोषी ठहराए गए लोगों के लिए, और उन बच्चों के लिए जिन पर बड़ों की तरह मुकदमे चलाए जाते हैं। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये सीधा जमीनी अनुभव है।
और उनका काम सिर्फ बचाव करना भर नहीं है, बल्कि वो सिस्टम को चुनौती भी दे रहे हैं। उन्होंने 125 से ज्यादा मौत की सजा पाए कैदियों का केस लड़ा है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े केस जीते भी हैं।
अच्छा।
हाँ, जैसे वो मिलर बनाम अलाबामा केस, जिसने ये तय किया कि बच्चों को, मतलब नाबालिगों को, बिना पैरोल की संभावना के उम्र कैद की सजा देना असंवैधानिक है। उनकी आवाज में वो कानूनी पैनापन तो है ही, साथ में उन लोगों के दर्द को समझने वाली गहरी संवेदना भी है। वो सिस्टम के अंदर रहकर उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल काम है।
बिल्कुल, और शायद यही चीज जस्ट मर्सी को इतनी ताकतवर बनाती है। ये कोई सूखी अकेडमिक बहस नहीं है, बल्कि एक इंसान की सच्ची यात्रा है जो हमें न्याय के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती है। किताब एक तरह से उनकी अपनी कहानी भी है और अमेरिकी न्याय व्यवस्था का आईना भी, और इसका जो दिल है वो उन लोगों को इंसानियत का दर्जा दिलाना है जिन्हें समाज और सिस्टम अक्सर सिर्फ एक अपराधी के टैग के साथ देखता है।
किताब का जो केंद्र है वो है वॉल्टर मैकमिलियन का मामला, एक अश्वेत आदमी जिस पर अलाबामा में एक श्वेत महिला की हत्या का आरोप लगता है और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था।
किया ही नहीं था।
हाँ, और दिलचस्प या कहें कि दुखद बात यह है कि ये सब मोनरोविल शहर में होता है, वही शहर जहां से मशहूर किताब टू किल अ मॉकिंगबर्ड की कहानी जुड़ी है।
हाँ, वो आयरनी तो कमाल की है
ना
जी।
उसमें भी एक बेगुनाह अश्वेत आदमी पर झूठे इल्जाम की कहानी थी। तो मैकमिलियन का केस पूरी किताब में एक धागे की तरह चलता है जो बाकी कहानियों और बड़े मुद्दों को एक साथ पिरोता है।
और इस एक कहानी के साथ साथ स्टीवेंसन हमें और भी कई दिल दहला देने वाली हकीकतों से रूबरू कराते हैं, जैसे छोटे बच्चे जिन्हें बड़ों की जेलों में उम्र कैद मिल जाती है,
आहा।
जैसे 13-14 साल के चार्ली और यान मैनुअल, या फिर मानसिक रूप से बीमार या कमजोर दिमाग वाले लोग जैसे हर्बर्ट रिचर्डसन या जिमी डिल, जिन्हें सिस्टम समझ ही नहीं पाता और बस सजा दे देता है, या महिलाएं जैसे मार्शा कोलबी, जिनके साथ हुए दुर्व्यवहार की कहानियों को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।
तो किताब कई मुश्किल सवालों से जूझती है कि भाई गलत सजाएं क्यों होती हैं, बच्चों पर बड़ों की तरह मुकदमे क्यों चलाए जाते हैं, क्या हमारी न्याय व्यवस्था में वाकई नस्ल और पैसे के आधार पर भेदभाव होता है, मौत की सजा कितनी सही है, और अमेरिका का जो नस्लीय इतिहास है, गुलामी, लिंचिंग वगैरह, वो आज भी सिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहा है।
हाँ, ये मास इनकार्सरेशन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, स्टीवेंसन तर्क देते हैं कि आज जो हम मास इनकार्सरेशन यानी लाखों लोगों का जेलों में बंद होना देखते हैं, वो कहीं ना कहीं गुलामी और नस्ली दमन की ऐतिहासिक सोच का ही नतीजा है, बस रूप बदल गया है। लेकिन किताब सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाती, ये बदलाव की उम्मीद भी जगाती है, दया की, सहानुभूति की और हर इंसान की गरिमा का सम्मान करने की अपील करती है।
चलिए वॉल्टर मैकमिलियन के केस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये मामला वाकई आंखें खोलने वाला है कि सिस्टम कैसे एक बेगुनाह को फंसा सकता है। जैसा आपने बताया, मैकमिलियन पर रोंडा मॉरिसन नाम की एक श्वेत महिला की हत्या का आरोप था। सबूत बेहद कमजोर।
हाँ बिल्कुल, मुख्य गवाह था राल्फ मायर्स, एक ऐसा आदमी जिसका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और जिसकी गवाही पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ दर्जनों गवाह थे जो कह रहे थे कि जुर्म के वक्त मैकमिलियन शहर में ही नहीं था, वो कहीं और एक चर्च पार्टी में था। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि मैकमिलियन को मुकदमा शुरू होने से पहले ही लगभग 1.5 साल तक डेथ रो में रखा गया।
डेथ रो पर, मतलब जहां मौत की सजा वाले कैदी होते हैं।
हाँ वही, ये पूरी तरह गैर कानूनी था, शायद सिर्फ दबाव बनाने के लिए। फिर जब जूरी ने उम्र कैद की सिफारिश की तो जज साहब रॉबर्ट ई ली के जूनियर, नाम भी देखिए, उन्होंने जूरी के फैसले को नजरअंदाज करते हुए मौत की सजा सुना दी।
ये तो मतलब साफ दिखाता है कि कैसे नस्ली तनाव, जनता का दबाव और पावर का गलत इस्तेमाल मिलकर किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि सिस्टम में अगर आप गरीब हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आपको शायद पहले ही दोषी मान लिया जाता है।
सीधी सी बात है।
स्टीवेंसन और उनकी टीम ईजेआई ने इस केस के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। उन्होंने पाया कि सरकारी वकील ने ऐसे सबूत छुपाए थे जो मैकमिलन की बेगुनाही साबित कर सकते थे। इसे कानूनी भाषा में ब्रेडी वायोलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन का ये फर्ज है कि वो डिफेंस को हर वो जानकारी दे जो अभियुक्त के पक्ष में जा सकती हो, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया। बाद में तो मुख्य गवाह रैल्फ मायर्स ने खुद माना कि पुलिस और वकीलों ने उस पर दबाव डालकर झूठी गवाही दिलवाई थी।
लेकिन क्या सिस्टम ने अपनी गलती मानी? नहीं, आसानी से तो बिल्कुल नहीं। स्थानीय अदालतों ने नया मुकदमा चलाने से भी इनकार कर दिया। सोचिए, इतने सबूत सामने आने के बाद भी ईजेआई को ऊपरी अदालतों में जाना पड़ा।
मतलब लड़ते रहना पड़ा।
हाँ, और मामले को देश भर में पहुंचाने के लिए 60 मिनट्स जैसे बड़े टीवी शो का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर दबाव बना। आखिरकार डेथ रो पर 6 साल बिताने के बाद मैकमिलियन बेगुनाह साबित हुए और रिहा हुए।
ये जीत तो थी, पर एक बहुत कड़वी जीत। जैसा स्टीवेंसन बताते हैं, जेल के उन सालों के सदमे ने, उस ट्रॉमा ने मैकमिलियन को अंदर से तोड़ दिया था। रिहाई के बाद भी वो कभी सामान्य नहीं हो पाए और बाद में उन्हें डिमेंशिया हो गया। ये दिखाता है कि अन्याय के जख्म कितने गहरे होते हैं। बेगुनाही साबित होने के बाद भी वो पूरी तरह भरते नहीं हैं।
मैकमिलियन की कहानी वाकई दिल दहला देती है, लेकिन स्टीवेंसन सिर्फ यहीं नहीं रुकते, वो बच्चों के मामलों पर भी उतना ही जोर देते हैं। आपको याद होगा 80 और 90 के दशक में अमेरिका में एक खतरनाक सोच फैली थी, सुपर प्रेडेटर की थ्योरी।
हाँ हाँ, वो बच्चों को दानव जैसा दिखाने वाली बात।
बिल्कुल, जिसने कुछ बच्चों को पैदाइशी अपराधी जैसा दिखाया। इसके चलते बच्चों को बड़ों की तरह सजा देने का चलन बहुत बढ़ गया। हमने इयान मैनुअल का जिक्र किया था, 13 साल की उम्र में बिना पैरोल के आजीवन कारावास। या ट्रीना, एक लड़की जिसकी जिंदगी भयानक शोषण से गुजरी और फिर बचपन में किए एक जुर्म के लिए उसे उम्र कैद मिल गई।
स्टीवेंसन का तर्क बहुत सीधा और मानवीय है। बच्चे बच्चे होते हैं, उनका दिमाग विकसित हो रहा होता है, उनमें बदलाव और सुधरने की गुंजाइश बड़ों से कहीं ज्यादा होती है। उन्हें बड़ों जैसी कठोर सजा देना उनकी इस क्षमता को नकारना है। सुप्रीम कोर्ट में वो जो केस था मिलर बनाम अलावामा, जिसे ईजीआई ने जीता, वो इसी सोच को बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। उसने कहा कि बच्चों को बिना किसी उम्मीद के हमेशा के लिए जेल में बंद कर देना एक तरह की क्रूरता है।
बिल्कुल, और किताब एक और जरूरी पहलू पर बात करती है, टूटेपन की या ब्रोकननेस की। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिनके जीवन के संघर्षों को, उनकी मुश्किलों को सिस्टम अक्सर नजरअंदाज कर देता है। जैसे हर्बर्ट रिचर्डसन, वियतनाम युद्ध का सिपाही जिसे गंभीर PTSD था,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
हाँ, युद्ध के भयानक अनुभवों से पैदा हुआ गहरा मानसिक तनाव। उसने गलती से एक बम से एक बच्ची की जान ले ली थी, लेकिन उसके पीछे उसका मानसिक आघात था। यह जिमी डिल जो बौद्धिक रूप से अक्षम था, लेकिन उसकी फांसी के वक्त इस बात पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया। इन मामलों में सिस्टम उनकी मानसिक हालत या उनके अतीत जैसे गरीबी, शोषण, युद्ध का सदमा, इन सब को समझने में नाकाम रहा।
और यहीं पर स्टीवेंसन मिटिगेशन के विचार पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि अदालत में किसी व्यक्ति के जुर्म के साथ साथ उसकी पूरी कहानी, उसके हालात, उसकी मानसिक स्थिति, उसके संघर्षों को भी सामने रखा जाए। ये जुर्म को सही ठहराना नहीं है, बल्कि उस इंसान को उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश है।
सही कहा। यह इस विचार से जुड़ा है कि कोई भी इंसान सिर्फ अपने सबसे बुरे काम से नहीं जाना जाना चाहिए। हमें पूरी तस्वीर देखने की जरूरत है, न कि सिर्फ एक हिस्सा।
सही बात है। और ये कहानियां हमें किताब के कुछ मुख्य संदेशों तक ले जाती हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश है निकटता, प्रॉक्सिमिटी की ताकत।
हाँ, ये बहुत पावरफुल आइडिया है।
स्टीवेंसन कहते हैं कि अगर हमें अन्याय को सच में समझना है और उसे बदलना है, तो हमें तकलीफ और असमानता के करीब जाना होगा। दूर बैठकर सिर्फ बातें बनाने या नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें उन लोगों से जुड़ना होगा, उनकी कहानियां सुननी होंगी जो इस सिस्टम से जूझ रहे हैं। उनका खुद का अनुभव यही है कि मौत की सजा पाए कैदियों के करीब जाने से कैसे उनका नजरिया बदला।
दूसरा अहम सबक है नैरेटिव बदलना और इंसानी गरिमा को पहचानना। समाज अक्सर अपराधियों के लिए एक बहुत सिंपल कहानी गढ़ लेता है, उन्हें राक्षस, हैवान या खतरा बताकर किनारे कर देता है। इससे उनके साथ कठोर व्यवहार करना या सजा देना आसान हो जाता है।
हाँ, अमानवीय बना देना।
बिल्कुल, स्टीवेंसन इस पर जोर देते हैं कि हम में से हर कोई अपने सबसे बुरे काम से बढ़कर है। हर इंसान के अंदर एक पूरी कहानी होती है, अच्छाई बुराई का मिश्रण होता है, उसकी गरिमा होती है। हमें उसे सिर्फ उसके एक काम से नहीं आंकना चाहिए।
तीसरा, व्यवस्थागत खामियां और इतिहास का बोझ। ये किताब इस भ्रम को तोड़ती है कि न्याय व्यवस्था मूल रूप से निष्पक्ष है और गलतियां बस कभी कभार हो जाती हैं। स्टीवेंसन दिखाते हैं कि भेदभाव और गलतियां सिस्टम में कहीं गहरे बैठी हुई हैं, खासकर गरीबों, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ।
हाँ, वो सिस्टमिक इशू है।
बिल्कुल, और वो आज की बड़ी समस्याओं जैसे अमेरिका में लाखों लोगों का जेलों में बंद होना, मास इनकार्सरेशन, को सीधे देश के नस्ली इतिहास, गुलामी, लिंचिंग, अलगाव से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि वो पुरानी सोच आज भी नए रूपों में जिंदा है और अन्याय को बढ़ावा दे रही है।
और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, दया, मर्सी की अहमियत। स्टीवेंसन का मानना है कि एक ऐसी न्याय व्यवस्था जो सिर्फ सजा देने पर टिकी हो, जिसमें माफी, दया और इंसानियत के लिए कोई जगह ना हो, वो कभी सच्चा न्याय नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि हम सब इंसान हैं, हम सब कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, गलतियां करते हैं, और हम सबको कभी ना कभी दया की जरूरत पड़ती है। अपनी इस कमी को मानना ही हमें दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु बनाता है। न्याय को दया की जरूरत है, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं होते, और एक इंसाफ पसंद समाज को सुधार और मुक्ति की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए।
इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो मतलब दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे ये विचार, गरीबी का उल्टा अमीरी नहीं है, गरीबी का उल्टा न्याय है। कितनी गहरी बात है ये,
है ना? गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि अक्सर ताकत की कमी है, आवाज की कमी है और बराबरी के मौके की कमी है। सच्चा न्याय ही लोगों को गरीबी के इस चक्र से निकालकर बराबरी का हक दिला सकता है।
हाँ, और वो बात जो बार बार सामने आती है, हम में से हर कोई अपने किए सबसे बुरे काम से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की अपील है कि लोगों को उनके अतीत या उनकी गलतियों के आधार पर हमेशा के लिए खारिज न किया जाए। हर इंसान में बदलाव की, पछतावा की और एक बेहतर इंसान बनने की संभावना होती है। यही तो दया का आधार है।
के तराजू को झुका सकते हैं। अच्छा वकील मिलना या ना मिलना, यह अक्सर केस का नतीजा तय कर देता है, भले ही सच्चाई कुछ भी हो।
एक और विचार जो उस निकटता के महत्व को समझाता है, निकटता ने मुझे कुछ बुनियादी और विनम्र सच सिखाए हैं, जिसमें यह अहम सबक भी शामिल है, हम सब अपने सबसे बुरे काम से बढ़कर हैं। यानी जब हम लोगों की कहानियों के करीब जाते हैं, तभी उनकी असलियत और उनकी इंसानियत समझ पाते हैं और वो लेबल टूट जाते हैं जो समाज ने उन पर चिपका दिए होते हैं।
देखिए, ये किताब भले ही अमेरिकी सिस्टम पर आधारित है, लेकिन जो बातें ये उठाती है वो दुनिया में कहीं भी लागू होती हैं, यूनिवर्सल हैं। ये हमें अपने आसपास, अपने देश में न्याय, बराबरी और कमजोर लोगों के साथ होने वाले बर्ताव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल,
ये हमें सिखाती है कि किसी भी खबर या घटना को सिर्फ ऊपरी तौर पर ना देखें, थोड़ा सवाल उठाएं, पूरी कहानी जानने की कोशिश करें।
बिल्कुल,
ये हमें हमदर्दी सिखाती है, ये याद दिलाती है कि हम सब में एक साझा इंसानियत है। किसी को फौरन बुरा या अपराधी का ठप्पा लगाने के बजाय उसकी कहानी, उसके हालात समझने की कोशिश करना, ये सोच तो जिंदगी के हर पहलू में काम आ सकती है। ये हमें ज्यादा जागरूक नागरिक बनाती है, जो सिर्फ व्यक्तिगत मामलों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे सिस्टम के मुद्दों को भी समझने की कोशिश करता है। हम अपने समाज में भी तो ये सवाल पूछ सकते हैं, किसकी आवाज सुनी जाती है, किसकी दबा दी जाती है, इंसाफ तक किसकी पहुंच आसान है और किसकी मुश्किल।
इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतार सकते हैं। जैसे जब हम अखबार में या टीवी पर किसी जुर्म की खबर देखते हैं, तो फौरन अपनी राय बनाने के बजाय हम एक पल रुककर सोच सकते हैं, क्या हमें पूरी कहानी पता है? क्या आरोपी के हालात पर भी कोई बात हुई है? क्या हम उसमें भी एक इंसान देख पा रहे हैं? या मान लीजिए कभी हमें कोई ऐसा मौका मिले जहां हमें किसी के बारे में फैसला लेना हो, तो सिर्फ एक पक्ष की कहानी पर यकीन ना करके सवाल पूछना, सबूतों को ध्यान से देखना।
स्टीवेंसन स्टोन कैचेस बनने की बात करते हैं। ये बाइबल की उस कहानी से आता है जहां भीड़ एक महिला पर पत्थर फेंकने वाली होती है और यीशु उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे।
हाँ,
हमारे लिए इसका मतलब हो सकता है कि जब सब किसी की निंदा कर रहे हों तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय रुककर सोचने का, समझने का और करुणा दिखाने का रास्ता चुनें। ये अपने अंदर के जो पूर्वाग्रह हैं, जो बायस हैं, उनको चुनौती देना भी है।
और अगर बड़े पैमाने पर सोचें तो शायद उन कोशिशों का साथ देना जो न्याय व्यवस्था में सुधार लाना चाहती हैं, जो सज़ा के दूसरे तरीकों पर काम कर रही हैं, या जो जेल से छूटने वालों को दोबारा समाज से जुड़ने में मदद कर रही हैं। ये अपने समाज के इतिहास में हुए अन्यायों को स्वीकार करना और उन्हें दूर करने की कोशिशों का समर्थन करना भी हो सकता है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये कि नाउमीदी या निराशा जो है वो इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्टीवेंसन अपनी कहानी में दिखाते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी रुकावटों, भ्रष्टाचार और लोगों की बेरुखी के बावजूद उम्मीद बनाए रखना एक जिम्मेदारी है, एक अनुशासन है। जैसा उन्होंने कहा भी है, निराशावाद न्याय का दुश्मन है। बदलाव मुमकिन है अगर लोग इंसानियत और दया के लिए खड़े रहें, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे।
और मेरे लिए वो निकटता वाला विचार सच में बहुत गहरा है। अन्याय को दूर से देखना आंकड़ों की तरह या खबरों की सुर्खियों की तरह बहुत आसान है, लेकिन उसके करीब जाना, उन लोगों की कहानियों को सुनना जिनकी जिंदगियां दांव पर हैं, उनके दर्द को महसूस करना और फिर बदलाव के लिए कुछ करना, असली चुनौती और ज़रूरत शायद यही है। और ये भी समझना कि आज का अन्याय अक्सर हमारे इतिहास के अनसुलझे सवालों का नतीजा होता है। हमें अपने अतीत का सामना ईमानदारी से करना होगा, तभी हम एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे।
ये किताब वाकई हमें सोचने पर छोड़ जाती है कि न्याय का असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ बदला लेना या सजा देना है, या इसमें सुधार, मरहम और दया की भी कोई जगह है? और हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में दया और इंसानियत के लिए और जगह कैसे बना सकते हैं? ये सवाल जरूरी हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।